ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರವನಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರವನಚಾರಿ ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಹರೆ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ರಾಧೆ ಶ್ರೀ ರಾಧೆ ಜಯ ರಾಧೆ ಜಯ ಶ್ರೀ ರಾಧೆ ಜಯ ರಾಧೆ ಶ್ರೀ ರಾಧೆ ಜಯ ರಾಧೆ ಜಯ ಶ್ರೀ ರಾಧೆ ಜಯ ರಾಧೆ ಶ್ರೀ ರಾಧೆ ಜಯ ರಾಧೆ ಜಯ ಶ್ರೀ ರಾಧೆ ರಾಧೆ ಶ್ರೀ ರಾಧೆ ಜಯ ರಾಧೆ ಜಯ ಶ್ರೀ ರಾಧೆ ಜಯ ರಾಧೆ ಶ್ರೀ ರಾಧೆ ಜಯ ರಾಧೆ ಜಯ ಶ್ರೀ ರಾಧೆ ಶ್ರೀ ಬರಸಾನಾ ಧಾಮ ಕೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ನಿತಾಯಿ ಗೌರ ಪ್ರೇಮಾನಂದೇ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ರಾಧೇ ಶ್ಯಾಮ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ರಾಧೇ ಶ್ಯಾಮ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ರಾಧೇ ಶ್ಯಾಮ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
हिंदी और इंग्लिश English,
Hindi,
English,
हरे कृष्णा, इसी में क्लास खत्म हो जाएगा. ब्रज भाषा सबके समझ में ना आवे. श्री राधे श्याम. तो आज का ये संस्कार सीमंतोन्नयन संस्कार, ये मनुष्य जीवन के कई संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है. वहां का दरवाजा बंद करेंगे तो अच्छा, वहां की आवाज नहीं आएगी. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
राम.
तो मनुष्य जीवन जो है वो केवल ऐसा एक जीवन है जिसमें संस्कार होते हैं, बाकी किसी भी जीवन में संस्कार नहीं होते. कोई प्राणी जीवन में संस्कार नहीं होते. जन्मना जायते शूद्रा, तो जन्म से हर एक व्यक्ति शूद्र होता है. सॉरी टू से, क्योंकि संस्कार के बिना जिसका जन्म होता है उसको शूद्र कहते हैं. संस्कार के साथ जिसका जन्म होता है उसको द्विज कहते हैं. जन्मना जायते शूद्रा संस्कार भवेत द्विज, मतलब ट्वाइस बॉर्न, एक माता के गर्भ से और एक संस्कार के द्वारा. वो संस्कार के द्वारा जिसका जन्म होता है संस्कार करने के पश्चात उसी को मनुष्य कहते हैं. उसके बाद मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है और संस्कार भी होते हैं और फिर वो ब्राह्मण बनता है. ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण. इस संस्कार बहुत जरूरी है और संस्कार हमारे जीवन की गति को बदलते हैं. संस्कार जीवन को भगवान की ओर ले जा सकते हैं अगर उसको भगवान भावना में किया जाए तो. लेकिन तात्पर्य की बात एक ही है कि संस्कार मनुष्य के लिए होते हैं, प्राणियों के लिए नहीं होते. और ऐसे कई 55 संस्कार बताए गए जो जन्म होने के पहले से शुरू होते हैं. गर्भाधान संस्कार, उसके बाद पुसंवन विधि, उसके बाद गर्भ संस्कार, उसके बाद सीमंतोन्नयन, उसके बाद जाति संस्कार, नाभि नाड़ी नाभि संस्कार, जाति संस्कार, नामकरण संस्कार, उपनयन, कई सारे संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, सुष्यंति, बहुत सारे संस्कार हैं. तो इन संस्कारों का अर्थ एक ही है कि जीव जिन अनंत जन्मों से भटक रहा है, जन्म मृत्यु के चक्र में, कर्मों के जाल में फंसा हुआ है, उससे मुक्त होने के लिए, शुद्धिकरण होने के लिए संस्कार दिए, ताकि एक एक करके हम सब सबसे छूट जाएं और बाद में हमारी आत्मा भगवान की भक्ति में रममाण हो जाए, मग्न हो जाए. तो इसलिए ये संस्कारों का महत्व है. लेकिन ये संस्कार केवल स्वार्थ के लिए करेंगे तो फिर वो एक जगह आपको छोड़ेंगे, उसका स्टेशन दूसरा होगा. संस्कारों का एक सार है, वो एक सार जो है वो भगवान को संतुष्ट करना है. हर संस्कार के पीछे एक ही भाव होता है, भगवान की संतुष्टि, सम सिद्धिर हरि तोषणम. और ये संस्कार करने से अगर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास हम नहीं करते हैं तो हमारे सारे संस्कार फेल है, यूजलेस. एक तो संस्कार करना जरूरी है, एक नंबर वन की बात है, और नंबर टू संस्कार करने के साथ साथ भगवान को प्रसन्न करना भी जरूरी है, और तीसरी बात उसके साथ भगवान के भक्तों को प्रसन्न करना भी जरूरी है। ऑल दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, तब जाकर संस्कार परिपूर्ण होता है और संस्कार का लाभ जिस जीव के लिए इच्छित है उसको पूर्णता संपूर्ण मतलब परिपूर्ण तरीके से प्राप्त होता है, कंप्लीटली बेनिफिशियल टू द सोल। तो आज का संस्कार जो है वो सीमांतोनयन संस्कार है। सीमांत यानी कि जो औरतें अपने बालों को दो विभाग करते हैं उसको सीमांत कहते हैं, जो संस्कारी औरतों के लिए बीच में होता है। कई लोगों को ये बात पता नहीं है और मैं आपको केवल शास्त्र के अनुसार बता रहा हूं कि जो कुलीन स्त्री होती है, शालीन कुलीन सर्वगुण संपन्न स्त्री होती है, अच्छे घराने से होती है, अच्छे संस्कार प्राप्त की होती है, वो हमेशा अपने बालों को बिल्कुल बीच में विभाजित करती है। और कृपया कोई औरतें बुरा नहीं मानना, मैं केवल शास्त्र से कह रहा हूं। और इसके अलावा जो साइड में बालों को अलग करते हैं वो केवल वेश्या होती है। पुराने जमाने में वेश्याओं को पहचानने का एक ही तरीका था कि उन्होंने अपना बाल का पार्टिंग किधर किया है, उससे वो सिग्नल देते हैं। अभी कैसे आजकल के जमाने में होमोसेक्सुअल्स कुछ रिंग पहनते हैं, वो सिग्नल होता है कि आई एम लाइक दिस। उस तरह से इसके अलावा कहीं भी बाल को अलग करना ये उस तरह के कार्य का प्रतीक है, अपवित्र कार्य का प्रतीक है। इसलिए स्त्रियों को हमेशा बीच में बालों को विभाजित करना चाहिए। और वो जो मार्ग है बीच वाला उसमें बहुत सारी शक्ति है। आज हमने जितने संस्कार किए वो सब उस मार्ग में किए, कितने लोग थे उसमें संस्कार में, तो वो जो भी हमने बहुत अद्भुत दिव्य चीजें को वहां से प्रवाहित किया मंत्रों के साथ में, वो उसी मार्ग में से किया। क्योंकि हमारे शरीर के कई रंध्र होते हैं, कई चक्र होते हैं, रंध्र होते हैं, कई इंपॉर्टेंट स्थान शरीर में, वहां पर दिव्य शक्ति सुप्त रूप में रहती है। तो उसको जागृत करने के लिए कई तरीके हैं। अभी गर्भ में जीव है उसको शक्ति देने के लिए वो मार्ग है, वहां से उसको शक्ति दी गई है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। फिर उसको मैंने बताया था उनको कि यहां से अलग करने के बाद नीचे से बालों को बांध के रखना है, न केवल उसको मुझे उसको इंसर्ट करना था इसलिए नहीं, तो एक जरूरी था उसको, क्योंकि मैंने कुछ चीजों को वहां पर लगाया ना उसको ऐसे बालों में। लेकिन बालों को बांधना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जैसे हमारा शिखा होता है कभी खुला नहीं होना चाहिए, इसको हमेशा बंधे रहना चाहिए। क्या कारण है उसका? पुरुषों का शिखा, स्त्रियों के लंबे बाल, दोनों बंधे होने चाहिए। क्या कारण है उसका? क्योंकि बालों में बहुत शक्ति होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की। वो आपके मति को पूर्णतः भ्रष्ट भी कर सकती है या आपके संस्कारों को बराबर संभाल के भी रख सकती है। इसलिए स्त्रियों के बाल जो होते हैं वो केश भूषा जो है वो केवल अपने घर में वो उसको खुले छोड़ सकते हैं, और घर के बाहर जब भी आप खुले बाल छोड़ के जाते हो तो अनेक प्रकार के जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो सबसे पहले बालों पर हावी हो जाते हैं। इसका एक प्रमाण आपको बताता हूं मैं। पुराने जमाने में जो तांत्रिक लोग होते थे उनकी शक्ति कहां पे होती थी? बालों, है ना? कितनी कहानियां हैं ऐसी। अभी अभी तो 100 साल पहले भी ऋषि कश्यप की कहानी है जो बाल उखाड़ के, दुर्वासा मन की कितनी कहानियां हैं, बाल उखाड़ के राक्षस पैदा करते थे। तो केवल जो अच्छी शक्तियां हैं वो भी बालों में होती है, और नेगेटिव शक्तियां भी बालों में होती है। अगर आप ब्लैक मैजिक सीखेंगे उसका सारा जोर बालों पे होता है। और जिन स्त्रियों के बाल खुले होते हैं उसमें कहीं गांठ नहीं लगाई गई, उन बालों के अंदर नेगेटिव जो भावनाएं हैं ना वो प्रवेश करती है। इसलिए जब से स्त्रियों के बाल खुले होकर आम जनता में स्त्रियां घूमने लगी है तब से स्त्रियों का चरित्र जो है वो पतित होते आया हुआ है। ऑल दिस नेगेटिव एक्टिविटीज जो होता है ना, वो फ्लर्टिंग, व्यभिचार और वो मति प्रश्न मति के रूप में लोगों को देखना, ये सब तब से शुरू हुआ है जब से स्त्रियों के बाल खुल गए। ये बहुत समझने की बात है। अभी आज मैं ये प्रवचन बाहर दूंगा तो मुझे पागल बोलेंगे लोग, क्योंकि एवरी अदर वुमन इज फुल्ली विद लूज हेयर, दिस इज हाउ इट इज। उनको लगता है कि जहां पर भी जाए शादी में वगैरह तो बाल खुले छोड़कर जाना चाहिए, लेटेस्ट फैशन की वो बाल खुले होंगे तो ही वो शादी का माहौल ऐसा लगता है कि कुछ है, उत्सव में जा रहे हैं। बट ये एक पतित संस्कृति का लक्षण है, क्योंकि स्त्रियों के जो केश होते हैं वो केवल पति को देखने के लिए होते हैं, इसलिए संस्कारी स्त्रियां जो होती है वो हमेशा पल्लू लेकर चलती हैं। उनके बालों का सौंदर्य जो है वो जनता के लिए नहीं है, आपके बालों का जो सौंदर्य है मुझे नहीं भूखना है आंखों से, केवल आपके पति को देखना है उसको। योर हेयर इज नॉट मेंट फॉर एनीबडी एल्स एक्सेप्ट योर हस्बैंड। पर आज शायद पति कम देखता होगा, जनता ज्यादा देखती है उनके बाल, है ना। पीपल फील कि मेरे बालों को सबको दिखाना ये मेरा वेल्थ है, दिस इज माय वेल्थ, आई वांट टू शो माय हेयर टू एवरीबॉडी। तो जितने बाल के स्त्रियों के ओपन होते हैं उसमें सारे जो अभी हमारे बचपन में हमारी माता हमारी बहनों को बताती थी कि बाल धोकर समुद्र के आसपास घूमना नहीं, या कभी खुले जगह पर घूमना नहीं चाहिए, प्राइवेट जगह पर बाल सुखाना है तो भी प्राइवेट जगह पर उसको सुखाना है, गिले तो होते हैं ना उसको, जनता में नहीं सुखाना है उसको, और खुले छोड़ के जाना भी नहीं है, खास करके समुद्र किनारे नदी किनारे सुनसान जगह पे, क्योंकि समुद्र किनारे शमशान होता है, वहां पर प्रेत जलते हैं, भूत प्रेत पिशाच डाकिन ब्रह्म राक्षस वहां घूमते रहते हैं, सबसे पहले बालों में प्रवेश करते हो सबसे पहले, और बालों में प्रवेश करके फिर मति को भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए ये सारे आपको लगेगा क्या है, सब महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर आपको नहीं विश्वास है तो फिर उसका परिणाम आपके जीवन में होते हुए दिखाई पड़ेगा। उच्छृंखल नाम का एक शब्द संस्कृत में आता है, उच्छृंखल यानी कि जो श्रृंखला में नहीं है, श्रृंखला के बाहर, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल। स्त्रियां तब ऐसे हो जाती है जब उनका संस्कार सम्मुक्त हो जाता है। तो इसलिए ये सब बातों को अगर श्रद्धा है तो बहुत महत्व है आपको, श्रद्धा नहीं तो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड चल ही रहा है ना बिना संस्कार के, आप देख ही रहे क्या हो रहा है उधर, उनके पतन का कोई लिमिट नहीं है, कहां जा रहे हैं और नीचे और नीचे और नीचे, कोई देयर इज नो एंड टू दैट, क्या क्या कर रहे हैं वो, क्योंकि वहां की सारी स्त्रियां तो खुले बाल लेके चलती है, बाल बांधने का कोई कारण ही नहीं। और अभी नए नए हेयर फॉल ऐसे आए हैं कि एक बार वो आपने कर दिया तो फिर उसको बालों को बांधने का कोई सवाल ही नहीं, उसको खुले ही छोड़ना है। सो इट इज ऑल डेंजरस कॉन्शियसनेस। और हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम भगवान को प्राप्त करें, तो संस्कार होना बहुत जरूरी है। तो जब हम बाल को बांधते हैं ना तो हमारी जो दिव्य शक्ति है वो हमारे पास ही रहती है। अगर मैं ये शिखा छोड़ के प्रवचन कर रहा हूं तो धीरे धीरे मेरी सारी आध्यात्मिक शक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए कभी भी हमको पुरुषों भी ब्राह्मणों को भी शिखा छोड़कर कभी भी बाहर नहीं जाना चाहिए। केवल स्नान के समय निद्रा के समय हम छोड़ते हैं उसको और सो जाते हैं या टॉयलेट में, और उसके बाद तुरंत उसको हम बांधते हैं वापस, उसको भी एक तिलक लगाते हैं, उस पर एक मंत्र बोलते हैं, ओम श्री वासुदेवाय नमः। ये जगह जो है ये बहुत पावरफुल जगह है, ये योग शास्त्र में इसको ब्रह्मरंध्र कहा गया है, और यहीं से योगी मुक्ति प्राप्त करता है ब्रह्मरंध्र से, और वहीं पर हमारा शिखा होता है, और वहीं से वो शिखा रखते हैं और वहां से दिव्य शक्ति गुरु जी के द्वारा प्राप्त होती रहती है। ये सब साइंस है, आपको नॉलेज है तो उसका बहुत महत्व है, नहीं तो कुछ नहीं। एनीवेज इस संस्कार में जो भी हमने यूज किए सब चीजें, कुश ग्रास का यूज किया, शालिंदर के एक बाल का उपयोग किया, वो सब जैसे कि गाय का होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, हम्प, मतलब क्या हिंदी में कुबड़ होता है, जो भी वो भी एक दिव्य शक्ति का संचार करने की जगह है। वो उस जगह से गाय और बैल जो वैश्विक आध्यात्मिक शक्ति है, वैश्विक आध्यात्मिक शक्ति है उसको आकर्षित करती है, और फिर वो शक्ति वहां से गाय बैल के पैर से भूमि में प्रवेश करती है और फिर भूमि को वो शक्ति प्राप्त होती है जिससे आपको वो अन्न धान्य और वो मेंटेनेंस का शक्ति प्राप्त कर देती है। और आधुनिक साइंस ने क्या कर दिया, बैल के द्वारा जमीन को क्या करते हैं उसको नांगर करना बंद हो गया, ट्रैक्टर आ गया, तो अन्न धान्य में दिव्य शक्ति कहां से आएगी? बैल को हटा दिया, फिनिश्ड। आप वो लोहे के आरी से ट्रैक्टर लगा के खेती कर रहे हैं तो खाना तो उत्पन्न हो रहा है, शक्ति नहीं उत्पन्न, वाइटलिटी इज नॉट देयर। गाय को हटा रहे हैं समाज से तो भी शक्ति जा रही है। तो वैसे ही वो जो सालिंदर है पॉर्क्यूपाइन, उसके अंदर ऐसे हजारों ऐसे सैकड़ों ऐसे हजारों ऐसे होते हैं बाल। बाल मतलब एक ऐसा एक दंडी जैसा होता है, कांटे जैसा होता है, तो कई सारे होते हैं। वो सारे आध्यात्मिक शक्ति को आकर्षित करते रहते हैं, इसलिए कि एंटीना, स्पिरिचुअल एंटीना, ये भी स्पिरिचुअल एंटीना है, आपके बाल भी आपका स्पिरिचुअल एंटीना है। तो वो उसके द्वारा मंत्र अभिमंत्रित करके हम वो शक्ति उस बालक को दे रहे हैं पिता पति के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से, ताकि गर्भ जो है वो सारे नेगेटिव जो वाइब्रेशन है उसके मुक्त हो जाए। भूत प्रेत पिशाच का जो अटैक है, लोगों की नजरों का जो अटैक है, वो भी एक बहुत पावरफुल चीज है। और आप बहुत सुंदर हैं और मैंने आपको ऐसे नजरों से देखा तो कुछ ना कुछ आपको हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे या कुछ हो जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो नजरों में बहुत शक्ति है। अभी कैसा है कलयुग का दुर्भाग्य ऐसा है कि पॉजिटिव शक्ति कम निगेटिव ज्यादा। मैं आपको देखकर आपका भला नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको देखकर आपका बुरा जरूर कर सकता हूं। माई हार्मिंग पोटेंसी इज मोर देन माई बेनिफिटिंग पोटेंसी, ये कलयुग का लक्षण है। मेरी नजर आपको ज्यादा लगेगी और कम आशीर्वाद दे सकती है, सिचुएशन है आज की, क्योंकि इतने सद्गुण है ही नहीं तो देखकर आपको कृपा प्राप्त हो। गुरु जी की कृपा उनके प्रेम भरे करुणा भरे नजरों से प्राप्त होती है। जब गुरु आपको प्रेम भरे नजरों से देखते हैं एकाग्रता से, तो भगवान की कृपा उनकी नजरों से प्राप्त हो जाती है। और हम आपको देखेंगे तो एनवी, ईगो, प्राइड, ग्रीड सब ट्रांसफर हो जाती है, और वो भी बालों पर गिरती है, तो स्त्रियों के लिए बहुत खराब चीज है। तो भोग की भावना से जब किसी को हम देखते हैं तो वो व्यक्ति के लिए बहुत खराब होता है, जिसको आप देख रहे हैं भोग की भावना से। जब स्त्रियां खुलेआम घूमती रहती तो दुनिया सब उनको भोग की भावना से देखते रहते हैं, दृष्टि से भोग करते रहते हैं उनका, जो एक बहुत निजी प्रॉपर्टी है किसी की, जो केवल उसी के लिए दी जाती है और जनता उसका दृष्टि भोग कर रही है, और ये उस स्त्री के चेतना के लिए बहुत हानिकारक है। तो ये सीमांत के हिस्से से वो दिव्य शक्तियां गर्भ को दी गई और शुभाशीर्वाद भी दिए गए उससे, और फिर एक पुत्रवती विवाहित स्त्री के द्वारा भी आशीर्वाद दिया गया, फिर वैष्णवों के द्वारा और माता पिताओं के द्वारा भी आशीर्वाद दिया गया। ये सब जो है ना, ये आशीष जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शुभ कामना हर जीव के लिए आवश्यक होती है, शुभ कामना के नाम जी नहीं सकते। लोगों की अगर दुष्कामनाएं हमारे साथ होंगी तो हम लोग प्रगति नहीं कर सकते, चाहे हम कितने भी धनवान, कितने भी पढ़े लिखे, कितने भी सुंदर, कितने भी अधिकारी पुरुष क्यों ना हो। वी नीड बेस्ट विशेस ऑफ अदर्स, और वो आजकल किसके हृदय में बेस्ट विशेस है? सबके घर में, सबके मन में द्वेष, हिंसा, लोभ, काम, क्रोध बसा हुआ है। शुभ आशीष कहां से उत्पन्न होगा? उसके लिए भी ट्रेनिंग लगती है। यू नीड टू ट्रेन योरसेल्फ टू गिव बेस्ट विशेस। अपने आप नहीं होता है बेस्ट विशेस, अपने आप बुरी इच्छाएं प्रकट होती है कि आप मेरे आगे जा रहे हो, आपकी तनख्वाह मेरे से अधिक है, आप मेरे से अधिक सुंदर हो, आप मेरे से अधिक अच्छे पद पर हो, आपकी गाड़ी मेरे से बड़ी है, मेरे पास नहीं है। ये दिस इज मोस्ट कॉमन अपने हृदय में। दूसरों के प्रति आशीष की भावना, शुभ शुभ कामना बहुत कम होती है आजकल, इसलिए भक्ति की जरूरत होती है। क्योंकि भक्ति मार्ग में आने के बाद हमको ट्रेनिंग मिलती है कि कैसे दूसरों के लिए शुभकामना करना है, हाउ टू विश ऑलवेज गुड फॉर अदर्स इन स्पाइट ऑफ सफरिंग योर सेल्फ, हाउ टू विश बेस्ट फॉर अदर्स। एक सद्गुण है, इसके संस्कार की आवश्यकता होती है। संस्कार के बिना, अच्छे परवरिश के बिना आप ये जो दूसरों के लिए शुभ आशीष, शुभ विचार, शुभेच्छा, शुभकामना प्रकट करने की भावना जो है वो निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए भगवान की भक्ति आवश्यक है। भगवान की भक्ति आवश्यक इसलिए है कि भगवान की भक्ति होने से हर प्रकार के सद्गुण जो आपके लिए जरूरी है वो आपके अंदर ऑटोमेटिक पैदा होने लगते हैं, उत्पन्न होने लगते हैं। सारे देवताओं के गुण आपके अंदर उत्पन्न होने लगते हैं। देवता ऐसे व्यक्ति का अक्षय व्यक्ति के अंदर निवास करना चाहते हैं। जैसे कार्तिक में जो दीपक भगवान को अर्पण करता है उस दीपक दान करने वाले भक्त के शरीर के अंदर देवता निवास करना चाहते हैं। इसलिए वैष्णव एक महान व्यक्ति है, क्योंकि वैष्णव जब भगवान की भक्ति करता है तो उसके केवल भक्ति करने के क्रिया से ही सारे देवता उसके शरीर के अंदर निवास करते हैं। ब्रह्म शिव आदि सारे देवता सारे संतगण उसके शरीर के अंदर निवास करते हैं, और इसलिए वो सारे तीर्थ स्थान उसके अंदर निवास करते हैं। इसलिए उनके होने से ही, उनके साथ बैठने से ही आपको पहले तो शांति का अनुभव होता है, फिर आनंद का अनुभव होता है, और शुभ शुभ फीलिंग होता है, अनुभूति होती है। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है, मनुष्य जीवन संस्कार के लिए। अंत्य संस्कार भी है ना, जीव शरीर को छोड़ने के बाद भी भगवान की प्राप्ति के लिए वैकुंठ गमन, वैकुंठ समाराधान कहते हैं उसको हमारी साउथ इंडिया में, वो भी संस्कार है। जिसके जिससे जीव शरीर से छूट जाएगा तो उसकी गति भगवान की ओर होगी, या तो पुनः आएगा, या तो नरक में जाएगा, या तो स्वर्ग में जाएगा, या तो भगवान के धाम में जाएगा। उसके लिए भी, उसका रास्ता सुधारने के लिए भी संस्कार है। आप कहेंगे अमेरिका में तो कोई संस्कार करता नहीं है, तो वी नो वेयर दे आर गोइंग, ओनली गोइंग टू सफर। दुख भोगने के लिए कहीं जाएंगे नरक में, इधर उधर, और कोई रास्ता नहीं है। संसार के बिना जीवन यानी नरक की ओर यात्रा निश्चित रूप से। चाहे वो शरीर भी बहुत सुंदर हो, चाहे बहुत धन दौलत हो, चाहे विश्व पर राज करने वाले लोग हो, वो चाहे यहां पर उनके पास बहुत हाईटेक चीजें हो, लेकिन मृत्यु के बाद में वो कुछ नहीं बचेगा उनके साथ, उनके कर्म जाएंगे उनके साथ और नरक की ओर, उनको दुख की ओर ले जाएंगे। ये संस्कार इतने महत्वपूर्ण है कि नंद महाराज और यशोदा माई तो राजा थे, वो ब्रज के राजा थे, ब्रजराज, और उनकी पत्नी ब्रजेश्वरी वो भी ब्रज की रानी थी। उनको कोई जरूरत नहीं थी अपने पुत्रों को गाय चराने के लिए ट्रेनिंग देने की, इतने नौकर थे उनके पास, इतनी गाय का, इतना लाखों करोड़ों गाय का धन था उनके पास। जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ ना, तो जन्मोत्सव एक समय क्या किया नंद बाबा ने, 7 पहाड़ बना दिए, पहाड़ चावल के, धान्य के। हर पहाड़ के ऊपर सोने और चांदी और ज्वेल्स रत्नों के मुकुट चढ़वाए पहाड़ के ऊपर, वो जो उन्होंने बनवाए धान्य के, उसके ऊपर अलंकार चढ़वाए, फूलों से श्रृंगार किया उन पहाड़ों का, और वो पहाड़ के चावल के अलंकारों के साथ ब्राह्मणों को दान दे दिए। साथ साथ कितनी सारी गायें भी, लाखों गायें दान कर दी। इतने अमीर थे वो, बस कितना धन था उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता है। उससे भी अधिक धनवान वृषभानु महाराज थे, वो उस कथा में आऊंगा मैं। तो ऐसे धनवान व्यक्ति को, वो तो कर्म से तो वैश्य है ना, वो गो कृषि रक्षा उनका, गो रक्षा कृषि वाणिज्य उनका धर्म है। ऐसा होने पर भी वो अपने कृष्ण और बलराम जी को नंगे पैर गौचारण चढ़ने के लिए भेजते हैं। 3 साल की उम्र से बच्चों को भेजते हैं, तो 5 साल हो गए तो बड़े गायों का भी जिम्मेदारी दे दिया उन्होंने। क्या जरूरत थी उनको, कोई जरूरत नहीं थी, नो नीड। इतने सर्वेंट्स हैं, वो अपने गाय चरा सकते हैं, उसमें क्या है। अपने इतने इतने मूल्यवान बालकों को, डिवाइन बालकों को भेजना है। लेकिन वो जानते थे कि संस्कार बहुत जरूरी है। हमारा पेशा ही गौचारण का है, हमारे हर बालक को गौचारण होना चाहिए। आज भी ब्रजवासी लोग, बहुत लोग परदेश काम करते हैं, अमेरिका इंग्लैंड में काम करते हैं, बहुत सारे लोग जीवन भर वहीं रहते हैं, कभी कभी जन्म से ही जाते हैं, जवान बच्चे तो वहां बच्चे होते हैं उनको अमेरिका में, लेकिन ब्रजवासी है वो, गोस्वामियों के बालक है। फिर 50-60 साल में ब्रज में लौट के आते हैं, तो 50 साल के बाद लौट के आने के बाद भी वो व्यक्ति जो 50 साल का है वो गौचारण करता है। ब्रजवासी उपाधि अगर उसको चाहिए अपने जीवन में खुद के लिए, तो उसको नंगे पैर रस्ते पर गाय को चराना ही है। और मैं देखा हूं कितने लोगों को 50-60 के साल के उम्र में भी गाय के लेकर रोड पे चलते, ब्रजवासी के भाव में, ब्रजवासी बनने के लिए। तो संस्कार कितना जरूरी है, क्योंकि संस्कार इस भावना से हम अपनाएंगे तो हम भगवान के पास पहुंचेंगे। इसलिए मैं आपको सबको विनती करता हूं, टेक इट वेरी सीरियसली। मनुष्य जीवन जानवर जीवन नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आहार निद्रा भय मैथुन इसी को करने के लिए मनुष्य जीवन नहीं दिया गया है। मनुष्य जीवन इसके परे है, इसमें भी आहार चाहिए, निद्रा चाहिए, शादी चाहिए, बच्चे चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन इसी के लिए जो ये जीवन नहीं दिया गया है। बार बार हम लोग इस कथा में 30 साल से हजारों बार सुनते होंगे, सुन गए होंगे इस बात को, ये फिर एक बार सुनना जरूरी है, क्योंकि हमारा मन हमेशा भटकते रहता है, आजू बाजू के परिस्थितियों के अनुसार, स्थिति के अनुसार, घटनाओं के अनुसार हमारा मन भटकते रहता है। तो बार बार उसको याद करना जरूरी है कि दिस इज इंपॉर्टेंट, और लाइफ इज नॉट मेंट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। हमारा जीवन इंद्रिय भोग के लिए नहीं है, हालांकि इंद्रिय भोग हम करते रहते हैं, बेसिक मिनिमम गृहस्थों के लिए भी होता है, होता रहता है, अच्छा खाना, अच्छा पीना, बीवी अच्छी, घर अच्छा, गाड़ी, सब कुछ भोग हमारे पास है, लेकिन उसी के लिए हम नहीं जी रहे हैं। यू कैन टेक ऑल दोस थिंग्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मन में ये नहीं करना कि इसी के लिए हम जी रहे हैं, इसे खाने के लिए जी रहे हैं कि जीने के लिए खा रहे हैं, ये वो इंपॉर्टेंट है समझना। अच्छा खाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीना नहीं है। उस तरह से केवल भोग करने के लिए जीवन चलाना नहीं है, जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए चलाना है। तो जब राधा रानी का जन्म हुआ, तो राधा रानी का जन्म जब हुआ तो बहुत साल से बाद हुआ, मतलब नंद बाबा और ऋषभानु महाराज दोनों 80-85 साल के हो गए थे, और गोकुल नंदगांव बरसाना छोड़कर वो गोकुल में चले गए थे, और नंद बाबा गोकुल में और ऋषभानु बाबा रावल में अपना राज्य जमा लिए थे। तो उधर कमल के फूल में, कमल के हजारों पंखड़ियों के कमल के फूल के बीच में राधा रानी की प्राप्ति हुई उनको। तो उस समय उनकी नानी जो थी कीर्ति माता जी की माता, वो इंदुसेन गोप की पत्नी थी, वो नाना राधा रानी की, वो मुखारा उनका गांव था। तो वो जब खबर चली कि मेरी बेटी को बेटी हो गई है बहुत सालों के बाद, तो वो बूढ़ी मुखारा देवी जो थी इतनी आनंद में हो मशगूल हो गई कि वो नाचने लगे बहुत जोर जोर से, बूढ़ी बूढ़ी गोपी। और उसने क्या किया, नाचते नाचते एक बैल गाड़ी के एक चक्र को उठाया, ऐसे जो नीचे रखा हुआ था उसको उठाया, और उस पर दीपक रखे उसने आरी पर, हर एक आरी पर, सब जगह पर, और दीपक जलाकर रखे, और उसको हाथ में लेकर घुमाने लगे ऐसे चक्र की तरह, और वो ऐसे करके नृत्य करने लगी। सारी गोपियों ने उनको देखा, उन्होंने भी अपने घर के बैलगाड़ी का पहिए लिए, उस पर दीपक लगाए, वो भी नृत्य करने लगे। तो पूरे मुखारा गांव में मुखारा देवी के नेतृत्व में सब गोपियां ऐसे नृत्य कर रही है राधा रानी के जन्म के उपलक्ष्य में। उस नृत्य का नाम क्या है, चरकुला नृत्य, आज भी ब्रज में बहुत फेमस है एज अ कल्चरल फोक डांस, उसकी प्रतियोगिता भी होती है चरकुला। तो और यहां पर नारद मुनि आए, और नारद मुनि गणित किया था कि भगवान की प्रिय सखी अंतरंगा शक्ति, हाँ, इसके अधीन भगवान है, वो आ गई है जन्म लेकर। तो उसके अनुसार वो आते हैं गणित करके उस घर में, तो वो कहते नहीं, कोई पुत्री नहीं हुई हमारे पास, क्योंकि उनको संकोच था उस बात का कि जन्म से वो ना आंखें खोल रही थी, ना आवाज कर रही था, ना कुछ सुन रही थी, तो गूंगी बहरी अंधी सब कुछ थी वो। तो बहुत खुशी भी थी और संकोच भी था, दुख भी था, कैसे उसका उत्सव मनाया, क्योंकि ऐसे अशुभ समझ रहे थे वो कि वो अंधी है, वो है। नारद मुनि आए तो उन्होंने कहा कोई लड़की हुई, जन्म हुई है यहाँ पर, तो वो कहे नहीं यहाँ पर कोई जन्म नहीं हुआ लड़की का। तो बड़े वो अचंभित हो गए, तो उन्होंने सुदामा को आगे किया कि नहीं हमारा एक ही लड़का है सुदामा। नहीं मैं तो लड़के की नहीं लड़की की बात कर रहा था, नहीं नहीं वो एक ही लड़का है। तो चले गए, तो उदास होकर दोबारा गणित करता हूँ, देखता हूँ कि रॉन्ग घर पे तो नहीं आया। ऐसे आगे चले गए तो वो पति पत्नी और कुछ घर के चर्चा कर रहे हैं कि अरे बड़े महाराज है ये, शायद इनकी कृपा से आंखें खोल दे तो कितना अच्छा है, सच बोलना चाहिए हमको। तो दोबारा उनको बुलाओ, भेजते महाराज जी आइए आइए, है हमारे घर में कन्या है, लेकिन समस्या ये है कि हमने आपको बताया नहीं, क्योंकि वो आंखें नहीं खुल रही, कुछ बोल नहीं रही है, कुछ सुन नहीं रही है, बहुत सारे खिलौने बजाए आंखों में कानों में उसके, तो सुनाई नहीं पड़ रहा है कुछ, इसलिए हम संकोच में थे, इसलिए आपको बताया नहीं। बोले हाँ यस यस, उसी के इंतजार में था। तो वो भाग के अंतपुर में ले गए उसको, दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि हम आपको बताएंगे क्या करना है। तो वो तो बड़ा लिस्ट बना दिया क्या करना है, बड़ा महोत्सव आयोजित करना है आपको, इन लोगों को बुलाना है, साहित्य लाना है करके उसको सबको भगा दिया उन्होंने। जाओ तैयारी करो तुरंत। सब लोग निकल गए और अकेले नारद मुनि ने दंडवत प्रणाम किया राधा रानी को, अंतपुर में दर्शन किया। उनके आंखों के सामने सब चले जाने के बाद में 16 साल के किशोर अवस्था का दर्शन राधा रानी ने उनको दिया। 16 वर्षा जो आपके कमरे में जो ऐसा हाथ है ना, ऐसा राधा रानी खड़ी है, वो उनका वो दर्शन है जो नारद मुनि को उन्होंने दिया। ऐसे कमल कमल के बीच में खड़ी है, वो आशीर्वाद दे रही है राधा रानी। तो नारद मुनि ने प्राप्त किया हुआ दर्शन है। नारद मुनि ने कहा कि हमको आपके अष्ट सखियों के साथ दर्शन करना है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप कुसुम सरोवर चले जाओ, वहां पर वृंदा देवी माधवी गोपी आपको सहायता करेंगी और मुझे मेरा दर्शन वहां पर भी होगा। तो नारद मुनि वहां से जो निकले ऐसे भाव विभोर होकर से नाचते हुए, कभी गोल गोल घूम रहे हैं, कभी बेहोश हो रहे हैं, रस्ते में गिर रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, कभी गोल घूम रहे हैं, उनको पता ही नहीं चला कब पहुंच गए वो, ऐसे गोल 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 होते होते कुसुम सरोवर पहुंचे। तो वहां पर वृंदा देवी ने और माधवी गोपी ने उनका स्वागत किया, दक्षिण किनारे में उनको स्नान कराया और नारद मुनि गोपी बन गए, नारदीय गोपी। फिर उनका उन्होंने श्रृंगार किया गोपी के रूप में, बहुत सुंदर सखी बनाया उसको, उसका हाथ पकड़कर उसको कुसुम सरोवर के जल के अंदर ले गए। वो कुसुम सरोवर के जल के अंदर आज भी रत्न सिंहासन है, एक स्वर्ण कमल है, वहां पर ब्रिज है उसके अंदर बीच में अदृश्य रूप में, जहां पर सखियां वहां से अंदर जाती है और बीच के कमल के बीच की जगह पर रत्न सिंहासन है, उसमें राधा कृष्ण विराजमान है, श्याम सुंदर जी राधा रानी के साथ विराजते हैं। और वो बीच वाले जगह के पास 8 दल है, उसमें 8 सखियां खड़ी है और उनकी सेवा कर रही है। उसमें फिर और हजारों करोड़ों दल है, उसके अंदर हजारों करोड़ों सखियां खड़ी है, उनको रिझा रही है। तो वो नारदीय गोपी का हाथ पकड़ कर उनको बीच में ले जाते हैं, बिल्कुल कमल के बीच की जगह पर, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जो स्थान होता है बीच में, ऐसा एक फ्लैट एरिया होती है, जैसे सूर्य फूल होता है ना, सनफ्लावर, उसके अंदर कैसी जगह होती है, कमल के बीच में भी जगह होती है, ऐसी जगह होती है उसमें, उसमें वो विराजमान है, वहां पर उसको ले जाते हैं और फिर उनके हाथ में चामर देते हैं। और नारदीय गोपी जो है राधा रानी और श्याम सुंदर जी की चामर सेवा करते हैं और साथ साथ में अष्ट सखियों का भी दर्शन करते हैं, सब उसको आशीर्वाद देते हैं। और फिर नारद मुनि को फिर वापस वो हाथ पकड़कर दक्षिण कोने में ले जाते हैं, फिर स्नान कराते हैं, फिर नारद मुनि जी दोबारा नारद मुनि बन जाते हैं। और जब वे सेवा करते हैं तो राधा रानी उनको आदेश देती है कि आप यहीं रहो और हमारी पूजा विधि का लेखन करो, पंचरात्रि का विधि का लेखन करो। तो नारद मुनि कहते हैं कि मुझे दक्ष राजा ने श्राप दिया है कि आप एक जगह 3 दिन के ऊपर रह सकते नहीं हो, आप रहते हो तो झगड़ा पैदा करते हो, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि आप 3 दिन के ऊपर एक जगह पर रह सकते नहीं हो, तो मैं कैसे रहूंगा यहाँ पर बहुत समय के लिए। तो राधा रानी ने एक बहुत सुंदर बात बताई उनको, उन्होंने कहा कि ये श्राप जो दिया गया है वो भौतिक जगत में लागू है आपके लिए, मटीरियल वर्ल्ड में लागू है, ये मटीरियल वर्ल्ड नहीं है, ये मेरा घर है, निज धाम मेरा घर है, रावल बरसाना वृंदावन धाम, यहाँ पर वो दक्ष राजा का शाप लागू नहीं है आपको, इसलिए आप जितना चाहे समय यहाँ पर निवास कर सकते हो। नारद मुनि फिर नाचते नाचते चले गए कुसुम सरोवर के पास ही, नारद वन उनका बना, वो नारद कुंड वहां बना, वहां पर उन्होंने बहुत देर तक रहकर भजन किया और नारद पंचरात्र का विधि का लेखन किया। यानी ये सब घटनाएं एक जगह पैरेलल चल रही है। उसके बाद में फिर नारद मुनि के कहने के अनुसार उत्सव मनाते ना, वो उन्होंने लिखा है इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट बहुत सारे लिखा है, इसमें लिखा है कृष्ण बलराम नंद यशोदा इनको बुलाना भूलना नहीं, वो एक इंपॉर्टेंट आइटम है उसके अंदर उनके लिस्ट में, तो उनको बुलाया जाता है, सब लोग आते हैं। और इतना सुंदर वर्णन है उसका उनके जन्मोत्सव का कि ब्रिश्मानो महाराज इतने खुश है, इतने खुश है, इतने समय के बाद में आई है कन्या। और सारी जितनी देवियां हैं, जितने देवताएं हैं, वो सब ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर आ जाते हैं, कोई ब्राह्मण बनकर आ रहा है, कोई फूल बेचने वाली बनकर आ रहा है, कोई ढाड़ीन मालीन जो होता है ना, बहुत सारे कंगन बेचने वाले, कोई ये करने वाले, कोई वो करने वाले, से अलग अलग रूप बनाकर सभी देवी देवता दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और विश्वानु महाराज और पृथ्वीराज को समझ में आ रहा है कि ये तो इनको तो मैंने इन्विटेशन नहीं दिया है, इनको भी नहीं दिया है, ये कौन है, कहाँ से आए, इनको भी नहीं दिया इन्विटेशन, ये तो दिया है, इनको नहीं दिया है। ऐसे ही आपको समझता है ना कभी शादी में कि ये कौन है, आई डोंट नो, बट आप शादी में पूछ सकते हैं कि आप कौन हो, आपको कार्ड है क्या। शादी का वातावरण ऐसे होता है उसके अंदर आप किसी को पूछ नहीं सकते कि हु आर यू। तो वैसे वो आनंद के माहौल में सभी देवी देवताओं का दर्शन कर रहे हैं, उनको पता नहीं ये कौन है, लेकिन वो उनके गांव के लोग नहीं, उनके देश के लोग नहीं है, वो अनजान लोग है सब, और बड़े तेज वाले लोग है बिल्कुल। लेकिन ऐसे फूल बेचने वाले और माला बेचने वाले और ये बेचने वाले बनकर आए हैं, वैसे रूप में आते हैं सब। विश्वानु बाबा, कीर्ति महारानी और राधा रानी सबको ब्लेसिंग देते हैं, गिफ्ट देते हैं, सब चले जाते हैं। साधु संत लोग आते हैं, विश्वानु महाराज भी धन धान्य के पर्वत दान देते हैं, गायों का दान देते हैं। और विशेष बात यह है कि विश्वानु महाराज अपने सारे भंडार खोल देते हैं, पहला मोतियों का भंडार खोलते हैं, सब लूट देते हैं सब लोग के ऊपर, सबको बांट देते हैं दक्षिणा के रूप में। और लोग ऐसे भर भर के मोती लेके जा रहे हैं अपने पल्लू में, उतने में खबर आती है कि अभी हीरों का भंडार खोल दिया है, तो मोती सारे वहीं फेंकते हैं और भागते हैं वापस हीरे लेने के लिए। तो हीरों का बंटवारा होता है पूरा सब जगह पे, तो हीरे लेकर जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, वहां देखो क्या दक्षिणा मिली है, वहां देखो हीरा मिल रहा है। तब पता चलता है कि वो जो एमराल्ड क्या बोलते हैं उसको, पन्ना का भंडार खोल दिया है। तो वो हीरे डालते हैं जमीन पर, फेंक देते हैं, वो भागते हैं उधर पन्ना लेने के लिए। हीरा, पन्ना, फिर पाछू मोती, हर प्रकार के अष्ट अष्ट जो रत्न है एक एक करके खोलते हैं। तो इसलिए कहा गया कि राधा रानी का जन्म जब हुआ तो पूरे ब्रज में सब जगह पर अलंकार अलंकार फैले हुए थे, ऐसे रस्ते पर एवरीवेयर। ये उसका प्रतीक है कि राधा रानी जो है वो श्री है, वो सब ऐश्वर्य जो है, सब लक्ष्मियों की लक्ष्मी है, वो इज द प्राइम लक्ष्मी, ओरिजिनल लक्ष्मी ऑफ कृष्ण। उसके वजह से उसके जन्म, ऐसे कहा गया कि कैसे बहुत फकीर लोग थे, सन्यासी विरक्त भिक्षुक लोग थे, उनके घर में अचानक धन धान्य भंडार भर गए। चोखी रोटी खाता है बिना नमक के, बिना घी के, उसके घर में हलवा पूड़ी पैदा हो गया। उसके घर के अंदर देखा मुड़के तो पूरा धन धान्य से भंडार भर गए पूरे। हाँ, धनीराम, धनीराम मतलब क्या कहते हैं उसको, भिक्षुक था वो धनीराम हो गया। जो किसी अलंकार के बिना होते थे वो अलंकार से भर गई, सब भूमि अलंकार रत्नों से भर गई, सब जगह आनंद आनंद हो गया, सब देवताओं का संचार हो गया उधर। इतना सुंदर वातावरण राधा रानी के जन्म से उत्पन्न हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें संस्कार क्या है, ब्राह्मणों को और भक्तों को दान जो उन्होंने खूब धर भर के किया, सब संतों को बुला बुला कर सत्कार किया, उनको संतुष्ट किया, दक्षिणा दान भोजन कराते, खीर पूरी का भोजन कराते। तो ये हमारे संस्कारों का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, संतों को दान। ये किसी भी संस्कार का एक अविभाज्य अंग है, इसको आप टाल नहीं सकते। आज संत तो आजकल रहे नहीं, तो जो भक्त भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, जो वैष्णव है, उनको बुलाकर उनका आशीर्वाद देना बहुत जरूरी है। क्योंकि उनका आशीर्वाद, यानी जब वो हृदय से संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं, यानी भगवान ही आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप देखिए, आप कृष्ण लीला को पढ़िए, राधा रानी की लीला को पढ़िए, हर एक घटना में उन्होंने संतों को बुलाया है, हर एक घटना में। हाँ, कालिया का मर्दन हुआ, संतों को बुलाया, पुतना का वध हुआ, संतों को बुलाया, शक्टासुर का वध हुआ, तृणाव्रत का वध हुआ, गौचारण का समय आया, संतों को बुलाया। जो एक एक जितने भी संस्कार हुए, जितने भी घटनाएं बुरी अच्छी हुई है, हर समय ब्राह्मणों को वैष्णवों को बुला बुलाकर यशोदा माता ने उनके मुख से शुभाशीर्वाद, मंत्रोच्चारण और उनको दक्षिणा दान किया हुआ है। और क्या बताया, मेरे लाला को आशीर्वाद दो। एक गाय और एक संतों का दान, ये दोनों सब जगह पर मुमकिन मौजूद है, उपस्थित है। हर दुर्घटना के बाद उन्होंने गाय के बछड़े की पूंछ जो है अपने बालक के अनेक अंगों पर मंत्रों के साथ में लगाई ब्राह्मणों के द्वारा। हाउ ऑस्पिशियस इट इज, एक गाय के पूंछ के बाल में कितनी शक्ति है। देखो आप, आपके हर प्रकार के अशुभ जीवन की घटनाओं को नष्ट कर सकता है, हर अशुभ संस्कार को नष्ट कर सकता है, केवल स्पर्श मात्र से। गाय के चरणों की जो धूल है ना, वो खूर के अंदर भी कभी अटकती है, वो उसको ब्रजवासी लोग रात को जब गाय लौट के आती है तो गाय का चरण गोद में लेकर उसको निकालते हैं, जमा करते हैं, हर रोज उसका तिलक करके बाहर जाते हैं। कोई महत्वपूर्ण कार्य है, किसी की शादी है, किसी का कुछ इंपॉर्टेंट कार्य है, कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहा है, कोई निर्णय लेने जा रहा है, तो गाय के खुर की रज जो है वो तिलक करके बाहर जाते हैं। ये हमारा धन है, कागज के नोट हमारा धन नहीं है, हीरे जवाहरात सोना हमारा धन नहीं है, हमारा धन संतों का आशीर्वाद है, वही हमें तार सकता है। बाकी यहाँ का धन दौलत हीरे कपड़े लत्ते आपको तार नहीं सकते हैं, आपको बांध सकते हैं दुनिया के भोग में, दुनिया के कर्मों के चक्र में, लेकिन मुक्त नहीं कर सकते आपको। मुक्त केवल संतों को आशीर्वाद कर सकता है, गाय की कृपा कर सकती है, सारा अशुभ जो जीवन में है वो नष्ट कर सकता है। इसलिए हमारे विवाह संस्कार में भी हम दूल्हा दुल्हन को बोलते हैं कि विवाह के बाद तुरंत आपको जाके गाय की सेवा करनी। आपको भी मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप गौ सेवा जरूर शुरू करना। जो जो आपको लगता है आपके जीवन में अशुभ हुआ, ये सेवा हुआ हुआ, उस अपने कर्मों का फल है, लेकिन हो भी रहा है तो आपको उससे मुक्त होना है तो संतों की सेवा और गाय की सेवा करो। आप गाय के सान्निध्य में आओ, गोमूत्र के सान्निध्य में आओ, गोबर के सान्निध्य में आ जाओ, गाय के शरीर के सान्निध्य में आ जाओ, शरीर पर हाथ फेरो, गोबर के बीच में गौशाला में जाके बैठो, वहां पे भगवान के नाम का जप करो। सर्वश्रेष्ठ संस्कार है वो आत्मा के ऊपर पवित्रता का, उसमें न केवल रोग दूर होते हैं, लेकिन अगर आपको कोई मेंटल टेंशन है, कोई फ्रस्ट्रेशन है माइंड में आपके, वो भी आपको गाय के पास बैठ के नष्ट हो सकता है। वो एक संस्कार जो उसको कोई समय नहीं है, सातवें महीने में, छठवें महीने में, तेरहवें साल में, कोई समय नहीं है उसका, जब चाहे वो संस्कार आपको अपने ऊपर कर सकते हो, गाय की सेवा का, गाय के सान्निध्य का, और निरंतर आपको वो पॉजिटिव एनर्जी दे रही है, भले वो भूखी हो, भले वो रोकी हो, भले वो तड़प रही हो खुद हमारे अत्याचार की वजह से, लेकिन वो आपको केवल आशीर्वाद ही देती है, और आपके जीवन का हर अशुभ अपवित्र जो चीज है उसको वो नष्ट कर सकती है। वो कितनी भी स्वयं भूखी हो, स्वयं तड़प रही हो दर्द से, उसकी पूछ जब आप अपने आप लगाते हो, सर पे लगाते हो, तो आप शुभता को प्राप्त करते हो। दिस इज लाइफ। एक वैष्णव का, संत का जीवन भी ऐसे होता है, वो होना भी चाहिए। वी आर हियर टू गिव नॉट टू टेक। हम संकट में रहेंगे तो भी संत लोग जो है वो आशीर्वाद ही देते हैं, किसी का अशुभ नहीं सोचते। दे विल सफर वॉट एवर फॉर देयर ओन थिंग्स, पर कभी भी वो दूसरों को आशीर्वाद शुभ चिंतन ही करते रहते। ये ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए होने वाले बालक के लिए यही तमन्ना करना कि ऐसे ही चेतना वाला पुत्र पुत्री प्राप्त हो, क्योंकि वो जन्म देना भी उसके लिए इसीलिए है कि ये सोचकर जन्म देना है कि ये मेरे जो जीव मेरे गर्भ में आया है उसका ये आखिरी गर्भ है, आखिरी गर्भाशय है, वो और किसी गर्भाशय में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अभी निकलेगा बाहर तो पुनर्जन्म नहीं लेगा, वो सीधे भगवत धाम चला जाएगा इस जन्म के अंत में। और ये माता को कामना करनी चाहिए कि ये मेरे बालक आपके लिए ये मेरा आखिरी गर्भाशय है, पुनः किसी गर्भाशय में आपको प्रवेश नहीं करना है। तो मुझे इस बात पर आपको एक कथा बताने की बहुत इच्छा हो रही है, सुनी भी होगी आपने रिकॉर्डिंग के अंदर, लेकिन फिर दोबारा बताता हूं। आज एक रानी थी मदालसा हमारे इतिहास में, वो इतनी श्रेष्ठ माता थी कि वो हर बालक को डे वन ऑफ कंसेप्शन गर्भधारणा से एक क्षण से पहले क्षण से वो बालक का ट्रेनिंग शुरू कर देती थी कि तू भारतीय परदेशी नहीं है, तू ब्राह्मण नहीं है, शूद्र नहीं है, वैश्य नहीं है, हाँ ब्रह्मचारी सन्यासी गृहस्थ नहीं है, तू केवल आत्मा है, तू ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन तू केवल भगवान का अंश है, तो भगवान को प्राप्त करना ही तेरा इस जीवन का उद्देश्य है, और मेरा ये गर्भ तेरा मेरा तुम्हारे लिए आखिरी गर्भ होगा। ऐसे उसको एक क्षण से ही पहले क्षण से ही ट्रेनिंग दे रही है, और जन्म होने के बाद में जब उसको दुग्धपान कर रही है तभी भी यही ट्रेनिंग दे रही है, कैसे तुम्हारे अनंत माता हुए हैं, मैं उसमें से एक हूं, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि तुम्हें इस चक्र से मुक्त करा दूं और भगवान से भेंट करा दूं, जो उसके संस्कार होते थे। उस संस्कार की वजह से जवान होते ही वो व्यक्ति जो है वो राजपाट छोड़ के जंगल में तपस्या करने के लिए चला जाता था। तो राजा को तो कई बार गर्भवती होती है पत्नी उसकी, हर एक बार गर्भवती, हर एक बार पुत्र होता है तो वो जा रहा है संन्यास लेने के लिए जंगल में, राजा परेशान हो जाता है, तो राजा राज्य कौन चलाएगा फिर, वारस कौन है राजा के लिए। तो एक बार मीटिंग लेते हैं, क्या हो क्या रहा है, एवरीबॉडी इज गोइंग टू जंगल। तो प्रधानमंत्री कहते हैं महाराज आपने मीटिंग बुलाया है लेकिन इस रोग का जो जड़ है वो आपके अंतपुर में है, आपके अंतपुर में ऐसी ट्रेनिंग मिल रही है, बालक को संस्कार हो रहे हैं उसके ऊपर इतने तेज कि जैसे ही वो समझदारी के उम्र में आता है तुरंत वो विरक्त होकर जंगल चल जाता है भगवान की प्राप्ति करने के लिए। पर कोई बात नहीं, इसके बाद का जो बालक होगा उसको मैं जन्म होते ही मेरे पास ले लूंगा, तो मैं संस्कार दूंगा उसको, मैं राजकुमार बनाऊंगा उसको, राजपाठ सिखाऊंगा, युद्ध कला सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा, ट्रेनिंग दूंगा पूरी एडमिनिस्ट्रेशन करने की। लेकिन लेगा कब वो, जन्म होने के बाद ही ना, थोड़ी जन्म के पहले लेगा, 9 महीने तो तुम्हारे पास ही है ना। तो कोई बात नहीं, राजा ने निर्णय ले लिया ऐसे ऐसे बालक को ले जाने वाले हो तो कोई बात नहीं, 9 months आर विद मी, तो 9 महीने में पूरी ट्रेनिंग देती है उसको वही स्टाइल में, वही सिखाती पूरे बालक को 9 महीने तक। जैसे जन्म होता है वो ले जाता है पिता उसका, और पूरा संस्कार वो करता है आगे का, उसका खिलाना पिलाना सब कुछ, और पूरा राजकुमार बना देता है उसको, पूरा युद्ध करने वाला बहुत पराक्रमी वीर सुंदर राजकुमार बना देता है, और वो बिल्कुल राज दरबार में एक्टिव पार्टिसिपेशन, और जवान होता है, युद्ध करने लगता है, सीमा को बढ़ाना प्रारंभ करता है, ऐसे पूरे सब कुछ। और रानी जो है ना वो एकदम फोकस्ड है कि मेरा लक्ष्य तो मैं छोड़ूंगी नहीं, प्रतिकूल हो अति अनुकूल स्थिति हो, मैं तो उसका तो शी इज वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। जब एक बार वो जाता है युद्ध करने के लिए तो क्षत्रिय औरतें भी जाती थी हमेशा पति के साथ पुत्र के साथ, तंबू में रहती थी और युद्ध का अवलोकन करती थी, शाम को रिपोर्ट पूछती थी उनको, और उनका जख्म को मलम पट्टी करना, उनको उत्साह देना, उनको थोड़ा डाउन हो गए तो उनको उत्साह देना, सब काम करती थी, बड़े वीर हुआ करती थी, घुड़ दौड़ करती थी, तलवार भी चलाती थी रानियां। तो वो जाती है उनके साथ में, तो बीच में युद्ध करते करते वो जंगल पहुंच जाते हैं और तंबू में विश्राम करने का समय आता है, तो माता अपने पुत्र से कहती है अरे अभी हम उस जगह पर आए हैं, तुम्हारे सारे बड़े भाई यहाँ तपस्या कर रहे क्यों ना तुम उसको उनको मिल लो भी, और कभी मुलाकात होगी तुम्हारी, इस बहाने तुम यहां तक आ गए हो। हाँ ये तो बड़ी विचार करने की अच्छी बात है। तो माता वो पुत्र को लेकर अपने बड़े पुत्रों को मिलने जाती है, और वहां पर वो बड़े सब पुत्र जो बैठकर तपस्या कर रहे हैं वो सब मिलकर अपने भाई को प्रीच करते हैं। तो वहीं से वो उनको ज्वाइन कर लेता है, उनका तपस्या करना बैठ जाता है। तो माता कितनी फोकस्ड है, वो मौके का इंतजार कर रही है कि मेरे हाथ से तो ले गए पति अपने अधिकार में, लेकिन मैं तो अपने लक्ष्य को छोड़ूंगी नहीं, आई विल कीप वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। वैसे जब तक आपका बालक भगवान के दरवाजे में जाने के तक योग्य नहीं होता तब तक अपना प्रयास जरूर रहना चाहिए। आजकल सब लोग नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, बिजी है करियर में, इसमें उसमें, समय नहीं उनको फोकस करने के लिए। लेकिन एक भक्त माता को ये सब होते हुए भी मेरा काम एक ही है, मेरे से गर्भ से जन्म लिए हुए पुत्र का जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति होनी चाहिए। दिस इज द सोल पर्पज, प्राइमरी पर्पज, बाकी उसके बाद में कई पर्पज हो सकते हैं, प्राइमरी पर्पज यह है कि मेरे कोख से जन्म लिया हुआ जीव भगवान के गोद में पहुंचना चाहिए। तो इसके लिए प्रयास करना मनुष्य जीवन है, और वो हम करेंगे तो मदालसा रानी की तरह हम धन्य माता हो जाएंगे। इसलिए एक श्रेष्ठ माता के रूप में मदालसा माता का जो है वो नाम ले जाता है, और संस्कृत श्लोक है उसको, जैसे बालकों को, बालक को गर्भ में वो शिक्षा दे रही है। तो शिक्षा हम सोचते हैं कि हम बड़ा होगा आएगा बाहर तो मैं उसको संस्कार करूंगी, संस्कार तो अंदर से ही होते हैं। आपके बालक को आप गर्भ से ही सारे श्लोक पढ़ा सकते हैं, जो भी आपको उसको बनाना है वो बना सकते हैं, उसके लिए प्रेरणा अंदर से दे सकते हैं, उसका बीज बो सकते हैं। मतलब भौतिक दृष्टि से उसको संगीतकार बनाना है, उसको गायक बनाना है, उसको वाद्य बजाने वाला बनाना है, उसको साइंटिस्ट बनाना है, उसको गणितज्ञ बनाना है, उसको क्या करना है, उसको योद्धा बनाना है वॉर में, वो सबका जो बीज है भावनाओं का, प्रेरणा का, वो आप गर्भावस्था में बो सकते हो। क्योंकि गर्भावस्था में बालक जो है पूर्णतः आप पर निर्भर होता है, बाहर आएगा तो उसका भी चॉइस आना शुरू होगा, अभी नहीं खाना है, पीछे पीछे भाग रही माता उसका, अभी नहीं खाना है, अभी नहीं सोना है, अभी खिलना है, ये पीला नहीं पहनना है, हरा ही पहनना है, आज वही चाहिए, ये नहीं चाहिए नाश्ते में, वो अपना चॉइस शुरू होता है, मतलब जो 100% निर्भर बालक अभी अंदर है वो धीरे धीरे 99, 98, 97, 90, 60, 10 साल का हो गया तो 100% इंडिपेंडेंट, किसी के नहीं सुनता है। तो जब वो पूर्णतः निर्भर है तब उसमें भक्ति का बीज बोना है आपको, और वो कितना भी जाके भटकेगा आगे, वो बीज उसको आगे जाकर उसका फल देगा, उसको फिर रास्ते पे लेके आएगा। इसलिए गर्भावस्था, फिर उसके बाद पहले 6 महीने, उसके बाद पहले 6 साल, यहां तक आपकी पूरी परवरिश 100% होनी चाहिए, उसकी नींव मजबूत वहां पर 6-7 साल तक देनी चाहिए, फिर उसके बाद में उसको फिर फॉलो करना चाहिए बस क्या कर रहा है उसको। लेकिन आपकी जो मजबूत नींव आपने दी है आध्यात्मिक, वो कभी भी आपको वो धोखा नहीं देगी, भले इधर उधर भटकेगा वो। प्रभुपाद जी भी सक्सेसफुल थे आध्यात्मिक जीवन में, लेकिन बीच में वो भक्ति से भी अलग हो गए थे कुछ समय के लिए, जन्म से एकदम वैष्णव तरीके से उनका परवरिश हुआ, लेकिन जवान हुए तो फिर महात्मा गांधी के आंदोलन में गए, फिर कॉलेज चले गए, फिर इधर वक्तृत्व स्पर्धा में चले गए, लोकेशन में चले गए, लेकिन जब उनके संस्कार के प्रभाव से फिर वो गुरु जी को मिले, फिर वो संस्कार जो बोए हुए थे वो तुरंत जागृत हो गए। समझ में आपको आया, जो बीज रूप में था वो फल रूप में प्रकट हो गया तुरंत। तो आपने दिया हुआ संस्कार जो, इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते कि मेरे पिता जो है वो परम भक्त थे भगवान के, वैष्णव थे, उन्होंने जो परवरिश दिया है, इसलिए कई किताब प्रभुपाद जी ने अपने पिताजी को अर्पण किए, मेरे पिताजी गौर मोहन डे को अर्पण, क्योंकि उन्होंने उनको जो संस्कार दिए फिर वो उनके गुरु जी ने, दूसरे पिताजी ने उनके बढ़ाए उसको, लेकिन मूल संस्कार माता पिता के होते हैं, फर्स्ट संस्कार उन्हीं के हाथ से हमारी परवरिश होती है, उसको हम उस संस्कार को कभी कम वैल्यू दे सकते नहीं। इसलिए माता पिताओं को भक्त बनना चाहिए, और ये जानकारी के साथ गर्भाधान संस्कार के साथ उसके आगे से परवरिश बच्चों को संस्कार के रूप में देनी चाहिए। हमारे गुरुदेव भी वही कहते हैं कि जो प्रेम और जो संस्कृति मेरे माता ने मुझे दी थी, इतना प्रेम दिया। हाँ, एक अमेरिकन परिवार है लेकिन पुराने जमाने की बात है, इतना प्रेम दिया, प्रेम में डुबो दिया, कहते माय पेरेंट्स एंड माय मदर ड्राउंड वी इन लव इन चाइल्डहुड। प्रेम भी एक संस्कार होता है, ऐसा नहीं कि खाली मंत्र ही बोलना है आपको, एक प्रेम भावना जो होती है वो भी एक संस्कार है। जब वो आप जीव को देते हो तो जो जीव को प्राप्त हुआ है वही जीव दूसरे को दे सकता है। यू कैन ओनली गिव व्हाट यू हैव रिसीव्ड, जो आपको मिला ही नहीं आप दूसरे को कैसे दे सकते हो। तो उन्होंने कहा इसलिए कि मुझे इतना प्रेम मिला है तो मुझे वो दूसरे को देना है, आई ओनली हैव दैट टू गिव अदर्स, सो आई एम गिविंग। अगर मुझे बहुत घृणा क्रोध हिंसा द्वेष इसकी भेंट मिली होती तो मैं उसी को दूसरे को देता, will I give everything else, others to, other things to others, what I have received that I will give to others। तो संतों का जीवन बैकग्राउंड ऐसा है, भक्ति तीर्थ महाराज, इंद्रदुम्न महाराज, ये सबने यही कहा है कि हमको बचपन में हमारे माता पिताओं से बहुत अच्छे संस्कार मिले, भले विदेशी होने पर भी एक संतृप्त जीवन मिला हमको, संतुष्ट जीवन मिला उनकी तरफ से, और वो संतुष्टि जो है वो आपने जो क्या कहते हैं इसको सेटिस्फेक्शन जो आपने अपने बालकों को दिया है, वही बालक समाज के लिए आगे जाकर कुछ महत् कार्य कर सकते हैं। अगर आपकी तरफ से परिवार की तरफ से उनको दुख दर्द बुरे अनुभव नेगेटिव इमोशंस एक्सप्लॉयटेशन अब्यूज ये सब मिला है तो बालक एक समाज के लिए बोझ बन जाता है, समाज कल्याणकारी नहीं हो सकता है। लेकिन जो बालक को आपने संतुष्टि प्रदान की है, प्रेम दिया है, देखभाल किया, संस्कार दिए उसको, वो एक संतुष्ट बालक के रूप में जब बड़ा होता है तो समाज के लिए वो अनंत कल्याण कर सकता है। एक दुखी बालक, एक असंतुष्ट बालक, एक अब्यूज्ड बालक जो है वो कभी भी समाज कल्याण नहीं कर सकता है, वो मरने दम तक समाज के लिए बोझ बनता रहेगा, नेगेटिव वाइब्रेशन देता रहेगा लोगों। इसलिए माता के जो रोल है जीवन में हमारे वो कभी भी हम अंडरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर माताओं का माइंड करियर में है, कुछ बनने में है, इसमें है उसमें है, बोले क्या मैं इतना पढ़ाई करके रोटी बनाने की रही मैं बनी, इतना चूल्हा में बिताने की रही बनी, मैं इतना सब डिग्री मैंने लिया ये किया है, कोई बात नहीं, उसका नारी के प्रगति के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसका मूल कर्तव्य जो है वो उसको नहीं भूलना चाहिए। एक पिता भी राजनीति का आदमी हो सकता है या तो डॉक्टर हो सकता है और कोई प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन पिता के साथ जो उसका कर्तव्य है उसको एग्जेम्पशन नहीं है उसके लिए। इसलिए एक अच्छी परिपूर्ण पत्नी और एक अच्छी माता बनना, माता परिपूर्ण पत्नी से भी अधिक परिपूर्णता माता होने में है। स्त्री का जो व्यक्तित्व है, स्त्री का पर्सनालिटी जो है, वो ज्यादातर माता का व्यक्तित्व है और कम परसेंटेज पत्नी का व्यक्तित्व है उसके अंदर। जिस स्त्री का व्यक्तित्व भगवान ने ऐसे बनाया है, जो वो अपना कर्तव्य पूरा करती है तभी वो भी खुद संतुष्ट हो जाती है। शी ऑल्सो इज हैप्पी एंड सैटिस्फाइड व्हेन शी बिकम्स अ गुड मदर, एंड लेटर ऑन वो और भी अपने कर्तव्य पूरी कर सकती है। ये आपका जो योगदान है बालक के लिए, इसको कोई तोड़ नहीं है, नो मैच फॉर दैट। जो आपके गर्भ अवस्था के माध्यम से और आपके दुग्ध पालन, दुग्ध पान कराने के माध्यम से जो आप बालक को देते हैं, उसका कोई तोड़ नहीं समाज में, जिंदगी में। देयर इज नो बेटर गिफ्ट टू चाइल्ड। आजकल के माता हो तो जल्दी से जल्दी दूध छोड़ाने का प्रयत्न करते हैं। लोग बोलते क्या अरे एक साल हो गया अभी तक दूध दे रही है, ये चर्चा होती रहती है, क्या तू अभी भी दे रही है, अरे क्या अभी स्कूल जाके आता फिर दूध पीता है, छोड़ा दे उसको भी, उधर कुछ कड़वा लगा देना फिर वो छोड़ देगा उसको। प्रभुपाद जी कहते थे कि लड़का हो तो 5 साल तक दूध देना चाहिए उसको। आई वॉन्ट टू सी, एक्चुअली मैं मेरी बात कह रहा हूँ, आई वॉन्ट टू सी दैट वो बच्चा स्कूल से आ रहा है 5 बजे और झट से जाकर माँ का दूध पी रहा है, क्योंकि क्या संस्कार दे रहे हैं उसको आप, उसको समझ में आ रहा है कि हाँ ये दो जो चीजें शरीर में है वो मेरे लिए दूध का उगम है, और ये दो अंग जिसके शरीर में होते हैं वो माता होती है। इतना बड़ा संस्कार प्राप्त हो रहा है, आगे जाकर उसको अपनी पत्नी छोड़कर सभी औरतों को माता के रूप में देखना है, ये अध्यात्मिक संस्कार उसको प्राप्त होता है, क्योंकि वो जब बड़ा होने तक वो देखा है कि ये मेरा दूध का उगम स्थान जो है, ये जितने शरीर पर है वो सब मेरी माता है, ये भाव उसमें उत्पन्न होता है। अब आप लोग इसमें क्या बड़ी बात है, पता है उसको सब माता है आपकी, ऐसा नहीं होता है, सर सो नेचुरल। अभी तो जिसको हम देखते लगता है कि यह मेरी पत्नी हो तो कैसा हो, दिस लेडी ऑल्सो माई वाइफ, हाउ इट विल बी सो नाइस, इट विल बी वन मोर ब्यूटीफुल लेडी, ओ आई विश आई शी कुड बी माई वाइफ, दिस इज वॉट कम्स टू आवर माइंड, आई विश आई कुड एंजॉय हर। बड़ी हमारे आध्यात्मिक प्रगति लिए बहुत खतरनाक चेतना है ये। चाणक्य मुनि ने ये बताया है कि सच्चा ज्ञानी पुरुष कौन है, जो हर अलग दूसरी स्त्री को, जो उसकी माँ पत्नी नहीं है, हर दूसरी स्त्री जो उसकी पत्नी नहीं है उसको माता समान देखता है। परदारेषु मातृवत, हर अलग स्त्री जो है वो उसको माता के रूप में देखता है, भले उसके मन में कुछ आए भावना पे भी वो मन को ट्रेन किया उसने, नहीं व्हाटएवर माय माइंड सेज बट स्टिल शी इज माय मदर। ये ज्ञान का लक्षण है एक। दूसरा है परद्रव्येषु विषवत या तुच्छवत, दूसरे का धन जो है उसके लिए विष समान मानता है, दिस इज पॉइजन, आई कैन नॉट गेट एक रूम बाकी आप दूसरे का धन रखना और उसका इस्तेमाल करना ये मेरे लिए विष के समान है, मृत्यु करता, मृत्यु प्राप्त कराएगा वो विष मेरे लिए। तो जो दूसरे की संपत्ति को कभी भोगना नहीं चाहता और दूसरे की संपत्ति को विष के समान देखता है, वो दूसरा ज्ञान का लक्षण है। और थर्ड लक्षण बताया उन्होंने, आत्मवत सर्वभूतेषु, हर एक जीव वो खुद के जैसा समझता है उसको और खुद के जैसा ही उसको व्यवहार करता है उसके साथ, जो खुद के साथ जैसा व्यवहार होना पसंद करता है वैसा ही व्यवहार सबके साथ में करता है। आत्मवत सर्वभूतेषु, सब जीवों के लिए जैसे वो खुद से व्यवहार चाहता है और करता है वैसे सबसे करता है, जैसे बाइबल में कहा है डू अन टू अदर्स दैट यू लाइक टू बी डन अन टू यू बाय अदर्स, जैसा आपको पसंद आएगा वैसे दूसरों से व्यवहार करना, ये एक ज्ञानी पुरुष का लक्षण है। ये तीन चीजें जब आपके अंदर आएगी तो आप ज्ञानी कहला सकते हैं अपने आप को या किसी और को। तो इसमें कहां पर MBBS आया, कहां पर MD आया, कहां पर CA आया, कहां पर इंजीनियरिंग आया, इसमें कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये तो कुछ अलग ही प्लेटफॉर्म है, लेकिन सही ज्ञान का लक्षण ये है। तो इस अनुभूति पर पहुंच चुका है जिसका दृष्टि और जिसका कार्य इन तीन चीजों पर आधारित है वो सही ज्ञानी है, वो समाज का कल्याण करने वाला व्यक्ति है, उससे कल्याण ही होता है समाज का। तो ये चेतना है जो है ना, ये संस्कार के द्वारा प्राप्त होती है। अपने आप ऑटोमेटिक मिस्टर मित्रजा के घर में जन्म हुआ तो ऑटोमेटिक प्राप्त हुआ, उसको ऐसा नहीं होता है। वो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। उसके अंदर आपके अंदर ये संस्कार होंगे तो अपने आप बच्चे के अंदर नहीं आएंगे, आपको बच्चे को देने पड़ेंगे वो संस्कार, क्यों तो ट्रेन परवरिश देनी पड़ती है उसको। वो बाकी जानवरों के पंछियों के बच्चे वो अपने आप सब सीख लेते हैं उनका कार्य, मनुष्य का प्राणी नहीं होता है। देखो गाय के बच्चे को देखो, जन्म होते ही एक एक घंटे के बाद खड़ा होता है और अपना अपना दूध पीने लगता है, कुछ देर बाद अपना अपना घास खाने लगता है। पंछी भी कैसे, चिपकली का बालक गिर गया तुरंत वो कीटक खाना शुरू कर देता है। वो उनका जीवन भगवान ने अपने स्तर पर बनाया। मनुष्य के बालक को हर चीज सिखानी पड़ती है, लंबे समय तक सिखानी पड़ती है, चलने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ाई, ये वो। और बुरी चीज तुरंत पकड़ लेता है और अच्छी चीजों को बहुत टाइम लगता है उसको पकड़ने में, है ना। सबसे अधिक प्रकृति के नियम कौन तोड़ता है? एक ही जीव है मनुष्य। गर्भपात कौन कौन सा जीव करता है? ओनली मनुष्य। कोई प्राणी पंछी कीटक गर्भपात करता है कभी? कोई प्राणी पंछी कभी अपना जो खाना है वो छोड़ के दूसरे का खाना खाता है क्या? हम लोग सबका मिलके सबका खाना खा लेते हैं, सबके हिस्से का खा लेते हैं, जमा भी कर लेते हैं और खा भी छीन भी लेते हैं, सब करते हैं। तो ये और कोई ऐसा जीव भगवान ने निर्माण नहीं किया जो प्रकृति के नियमों का लोप करता है। तो इससे अगर बचना है तो माता को और पिता को अपने बालकों को संस्कार देना बहुत आवश्यक है। और ये सारे संस्कार होने के पश्चात सबसे ऊंचा संस्कार भक्ति संस्कार, वो नहीं हमने दिया तो हमने माता पिता का कर्तव्य नहीं पूर्ण किया। पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, हाँ और क्या, गुरु न सस्यात् और राजा, राजा के भी वर्णन आता है उसके अंदर। एक पिता को, एक माता को, एक राजा को और एक गुरु को, उनके ऊपर निर्भर जो व्यक्ति लोग हैं, कैसे, माता के ऊपर पुत्र, पिता के ऊपर भी पुत्र मतलब संतान, राजा के ऊपर निर्भर कौन है प्रजा, गुरु पर निर्भर कौन है शिष्य लोग। तो ऐसे चार लोगों को पहले से ही ना माता बनने का अधिकार है, ना पिता बनने का अधिकार है, ना गुरु बनने का अधिकार है, ना राजा बनने का अधिकार है। जब तक उन पर जो लोग निर्भर है उनको भगवान के प्राप्ति के रास्ते पर जब तक आप नहीं छोड़ते हो, तब तक आपको ना माता बनने का अधिकार है, ना पिता बनने का, ना गुरु बनने का, ना राजा बनने का अधिकार। यू कैनॉट एज्यूम द पोस्ट ओनली, और उसके पहले यू कांट मैरी ओनली टिल यू आर एबल टू गाइड योर वाइफ इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसलिए हम लोग शपथ लिया ना आप लोगों से कि मैं इनकी शरीर के साथ साथ भावनाओं की देखभाल करूंगा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन करूंगा, और आपने कहा था कि मैं उनसे एकनिष्ठ रहूंगी और उनको भक्ति में उनको सहायता करूंगी। लेकिन आजकल खाली पुरोहित ही मंत्र वचन ले लेता है और पति पत्नी मम्मा बोल लेते हैं, बस खत्म। क्या बोला उसको ही पता, जिम्मेदारी भी उसकी मुझे मालूम नहीं क्या है ना। तो जिम्मेदारी तब से शुरू होती है विवाह से, विवाह के पहले से आपको भक्त बनना है, फिर भक्त स्त्री को विवाहित करके आपके निर्देश में आपकी छत्र छाया में भगवान के रास्ते पर गाइड करना है, टू इंस्पायर एंड टू गाइड टू गिव स्ट्रेंथ। सुबह संतान होगी उनको भी भगवान के रास्ते में लाना है, तब आपका गृहस्थ जीवन परिपूर्ण है। तो कुत्ता बिल्ली भी जन्म देते बच्चों को, क्या बड़ी बात है, छह छह बच्चों को जन्म देते एक साथ में, व्हाट इज बिग थिंग अबाउट इट, व्हाट बिग थिंग वी हैव डन, नथिंग। तो इन कर्तव्यों को समझेंगे तो हमारा जीवन परिपूर्ण है, नहीं तो आपको आखिर में दुखी होना है। हाँ, आपके बच्चे आपको छोड़ के आएंगे अनाथ आश्रम में, क्या बोलते हैं उसको, वृद्ध आश्रम में। जो आपने उनको दिया है वो आपको दे रहे हैं वापस, आपने उनको समय नहीं दिया वो आपको समय नहीं दे रहे, आपने उनको देखभाल नहीं किया वो आपकी देखभाल नहीं करेंगे, आपने उनको जब जरूरत थी तब समय नहीं दिया, जब आपको जरूरत होगी वो आपको समय नहीं देंगे। इट्स जस्ट व्हाट यू गिव यू रिसीव, आप जो देते हो वही आप प्राप्त करते हो। आपने प्रेम दिया तो प्रेम मिलेगा आपको, देखभाल किया तो देखभाल मिलेगी, करुणा दिखाया तो करुणा मिलेगी आपको, संकट में किसका सहायता किया है तो आपको संकट में आपको सहायता मिलेगी। जो आप देते हो वही आपको प्राप्त होता है, और कोई नई चीज प्राप्त नहीं होती आपको। इसलिए हमारे बालकों को हमको संस्कार देना है, प्रेम देना है, परवरिश देना है, देखभाल देना है, भक्ति का ज्ञान देना है, मार्गदर्शन देना है, प्रेरणा देनी है। तो जब आप अपाइज हो जाओगे बुढ़ापे में तो आपको देखभाल मिलेगी, प्रेम मिलेगा, हाँ सब कुछ मिलेगा आपको। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बंद कैसे हो गया? तो बंद हो गया, बैटरी खत्म हो गया उसका। चलो उसमें होगा ना, ठीक है। कोई प्रश्न है किसी का?
जैसे आपने स्टार्टिंग में जैसे बताया कि केश के विषय में, तो केश ढक के रखना चाहिए जैसे नारियों के, तो ये कुछ ऐसा भी है कि कल्चर वाइज होता है, किसी कल्चर में है किसी कल्चर में नहीं है, ये स्टैंडर्ड है
सब कल्चर में है, लेकिन अभी इतना उसका लोग भूल गए हैं उसको कि अभी वो है क्या, ये भी पूछते हैं, बोलते हैं हमारे में ऐसा नहीं है, ऐसा बोलते
हैं। इसको अपशगुन मानते
हैं क्या? लेकिन आप देखेंगे साउथ इंडिया में, ध्यान से देखना आप, इंडिया में जब औरतें बाल धोती हैं तो यहाँ से कुछ बाल लेती हैं, यहाँ से कुछ बाल लेती हैं और जोड़ देती बीच में, और एक एक लाइन बीच में बना देती है उसका, और फिर झाड़ जाती है उसको, है ना? आई मीन इट्स नॉट कंप्लीट कवरिंग, बट कहीं ना कहीं उसमें नॉट है, आपका शील हरण नहीं हो रहा है किधर, ऐसा है। बट एनी वे आप बताइए, जब जब भी किसी औरत के लंबे बाल आप देखते हैं तो हमारे मन में क्या विचार आते हैं? तुरंत अट्रैक्शन तो होता ही है, दूसरे की नजर तो गिर जाती है उसके। और हम क्या देखते हैं, आपके इलाके में क्या देखते हैं? जैसे कोई मंदिर जाता है तुरंत सर पे ऐसा कुछ रख देते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट? वो तो भी उसका एक बचा हुआ क्या कहते हैं उसको, अवशेष है उसका, वो संस्कार का। रियल प्रिंसिपल इज दैट कि भगवान के मंदिर में जैसे आते हैं तो अपने को अपने आप को ढकना चाहिए, भगवान को देखना चाहिए। Nobody should see me because I am beautiful. They should see him. इसलिए अगर मैं ब्यूटीफुल हूं तो मैं अपने आप को कवर करूंगी ताकि nobody will see me. They should see him, not me. है ना? तो पहले हम लोग तो भी एकदम यंग थे, तो जब जाते थे इस्कॉन मंदिर में तो हर लड़कियों को देखते रहते थे, so many beautiful girls are coming Jew temple में। बट एक्चुअली संस्कार को है, उनको चमकदार क्यों बनाते हैं भगवान को, ताकि यू शुड सी हिम, नॉट प्रेक्षक को देखने के लिए आप वहां नहीं गए, उसको देखने के लिए गए। इसलिए ही वेयर्स गॉर्जियस ड्रेसेस, शाइनिंग लाइट्स, दिस दैट, डार्क कलर्स, बॉडी कलर्स वगैरह जो है ना, ही वेयर्स इट, यू आर नॉट सपोज टू वेयर इट। आपने अगर भड़क कपड़े पहने तो लोग आपको देखेंगे, ये कौन है, उसको नहीं देखेंगे। That's how it is. तभी मैं इस पर क्या कमेंट करूंगा, अभी जो इतना संस्कार लोगों के घट चुके हैं, साउथ इंडिया में क्या है, साउथ इंडिया में क्या है, I cannot comment on that. I can only tell you what is there in scriptures. और लोग आपसे विवाद भी कर सकते हैं कि नहीं हमारे इसमें ऐसा नहीं, हमारे इसमें अशुभ मानते हैं, हमारे में ऐसा नहीं, हमारे में छोड़ के जाना चाहिए, वॉट एवर, यू सी द रिजल्ट। द फैक्ट क्या है, जब किसी साउथ इंडियन औरत के काले घुंघराले बाल कोई देखता है उसके मन में माँ की भावना आती है क्या? मन में वो देखो आप पहले, हमारे अंदर आती है क्या पहले देखो, देन यू कैन टेल व्हाट इज द रियलिटी। ऐसा है, हम भी अगर कोई बहुत लंबे बाल सुंदर बाल वाली औरत अगर देख रहे हैं रास्ते में तो हमारा मन भी करके दोबारा एक बार देखेंगे मुड़ के, एक बार नजर पे आ गया तो ठीक है, लेकिन एक बार और देखने का दिल करता है, सच अ ब्यूटीफुल थिंग टू सी, बट वी डोंट सी, ओ माई मदर, ऐसा मुठरे मुड़ के देखते हैं उसको। सो ये सही सच्चाई है, दिस इज अ ग्राउंड रियलिटी, हाउएवर बी से, व्हाटएवर बी से, बट अगर आपने उसको छोड़ ही दिया तो फिर वो सबको देखते रहेंगे आप उसी भावना से, तो ये करेक्शन कभी होगा यहाँ का फिर? और ये करेक्शन अगर आप खुद नहीं करेंगे तो बुढ़ापे और अंत्य समय तक नहीं होगा। हमने हॉस्पिटल में देखा हुआ है 80-85 ईयर ओल्ड पीपल ऑन वेंटिलेटर, डाइंग कंडीशन, स्टिल लुकिंग एट द ब्यूटिफुल यंग गर्ल्स। क्योंकि संस्कार के बिना सब जाता नहीं है, ये नेचुरल थिंग इज टू बी अट्रैक्टेड, एफर्टफुल थिंग इज टू नॉट गेट अट्रैक्टेड। और कोई प्रश्न है?
मुसलमानों में भी जो बुर्का पहनते हैं,
प्रभु जी वो आपको एक अतिरिक्त दिखाई पड़ेगा, ये एक्सट्रीम है ना, बट उसका उसका प्रिंसिपल देखिए आप। मैं सऊदी अरब में था, जवान अवस्था में था, और किसी कारण पत्नी को वहां ले नहीं जा सका मैं, मतलब मोर सेविंग रिक्वायर्ड एंड नो अर्ली वांटेड टू कम बैक, तो मैं मेरे धर्म पत्नी को वहां लेके नहीं गया था, तो मैं एक जवान व्यक्ति था, लेकिन मैं कभी भी वहां एजिटेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक स्त्री का नाखून भी मुझे नजर में कभी नहीं आया, ना टीवी में, ना रोड पे, कभी ना होर्डिंग्स के ऊपर, ना एडवर्टाइज में, ना कोई टीवी प्रोग्राम में, ना प्रत्यक्ष. आई डिडंट सी एनी, आई सॉ मेनी वीमेन बट आई डिडंट सी देयर हेयर, आई नेवर न्यू. मेरे कलीग्स भी बहुत लेडीज थी वहां पर, लेकिन उनके बाल कितने लंबे हैं मुझे कभी 2 साल में कभी समझ में नहीं आया. आई नेवर अंडरस्टूड, तो एक बाल भी उनके उसके बाहर निकलता नहीं था, उसके अंदर ही रहता था. उनका नियम था कि कभी भी वो आम जनता के आम जगह पर कभी भी उसको ठीक नहीं करते थे. उसको ठीक करने समय आता था ना, दे हैड टू रिमूव समटाइम टाई अगेन, तो कभी भी नहीं करेंगे वो. और अगर कोई करते तो उसको हराम मानते थे वो, वल्लाही हराम आदा ऐसा बोलते थे. अब कितना इंपॉर्टेंट संस्कार है वो बताइए आप. सो इंपॉर्टेंट इट इज, यू आर नॉट मेंट टू बी द एंजॉयबल प्रॉपर्टी फॉर अदर्स. केवल घरों में ही अपने रहते थे वो, घर के भी अंतपुर में वो बाल छोड़कर बना रहे या कुछ सवार रहे उसको जैसे अंदर, नॉट इवन इन हॉल ऑफ द हाउस. अभी आप उसको एक्सट्रीम कह सकते हो ठीक है, बट प्रिंसिपल समझ लो उसका क्या है.
और जो आजकल माताएं लोग जो बाल कटाते हैं,
माताओं को बाल तभी कटाने का अधिकार है जब उसका पति मर जाता है. अभी अभी देखो कैसा है ना, मॉडर्न सिचुएशन और हमारा एंशिएंट कल्चर जो है वो भी बहुत मुश्किल हो गया मैच करना उसको. हम केवल आपको तत्व बता सकते हैं, प्रिंसिपल बता सकते हैं, इसका मीनिंग क्या है आपको तय करना है, आपको कितना फॉलो करना है और क्या करना है, अपने आप को कितना रिस्क में डालना है ये आपको तय करना है. मैं नहीं बताऊंगा आपको कि आप ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ऐसा नहीं करना चाहिए. हमारा काम आपको तत्व बताना है, तत्व को कैसे ग्रहण करना है, कितना आपको स्वीकार करना है, इट्स अप टू यू. और उसके ऊपर क्या रिस्क आप ही होगे, क्या कितने आप रिस्क फ्री होंगे वो आपको तय करना है. आई कैन डिसाइड फॉर माई सेल्फ, आई कैन नॉट डिसाइड फॉर योर सेल्फ. और जैसे आप करोगे वैसे ही आपके बच्चे करेंगे. आप अपने बच्चे को रोक नहीं सकते उसके बाद में. आपने अगर वैसा व्यवहार किया है और वो जब जवान हो गए तो आपने तुरंत उसको उल्टा बताना शुरू किया, बोले मम्मी मैंने आपको भी देखा है, पापा मैंने आपको भी देखा है, आप क्या मुझे बता रहे हो. तो आपका जो व्यवहार है वो सबसे बड़ा संस्कार आपका व्यवहार है, आपका एग्जाम्पल है. उसके बाद में आपकी बातें आपका संस्कार है, और आपकी बातें तब संस्कार बन सकती है जब तो आपका व्यवहार संस्कार के आदर्श रूप है. ये बिहेवियर इज एग्जाम्पलरी, तभी आपकी बातों पर वजन आएगा, जोर आएगा बातों पर, वो असर करेगा लोगों के हृदय पर. ऐसा है. Yes.
Especially for a father, at times it is very difficult to give the quality or quantity time to the kids because of kind of job or whatever we, the lifestyle we have nowadays. So, in whatever limited time, whatever time we are giving to the children, it should be on more on a, I mean to say like, aisa karo, just always guiding, or it should be like, more friendly and then how exactly it should be.
उसके लिए समय का डिवीजन शास्त्र ने करके रखा है. 10 साल के बाद में केवल फ्रेंडशिप करना है, 5 साल तक केवल प्रेम देना है, 5 से 10 तक ट्रेनिंग ताड़न यानी कि डंडे के साथ में आपको ट्रेनिंग देना है उनको. उसके बाद फ्रेंडशिप बताया गया है, as soon as he becomes young, you have to become friend. तो ये उसका आपके प्रश्न का उत्तर समय के अनुसार है. आपके बालक कौन से अवस्था में है, आपकी लड़की कौन सी अवस्था में, आपके लड़का कौन सी अवस्था में, उसके अनुसार आपको व्यवहार करना है. एक बार वो युवा अवस्था में आ गया, जो युवा अवस्था बहुत जल्दी आती है आजकल, है ना, 15 साल में बताया, 15 साल 10 साल में युवा हो जाते हैं आजकल, लड़कियां भी सयानी हो जाती है. तो उसके बाद आपको फ्रेंडशिप समझाना है उसको, उसके पहला समय आपको उसको ट्रेनिंग देने. लेकिन क्वालिटी समय देने का कोई पर्याय नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन फॉर क्वालिटी टाइम. और जो भी आप टाइम दे रहे हो उसके अंदर खाली डंडा ही दिखाते रहोगे तो कोई बालक आपका नहीं सुनेगा. आजकल तो नहीं सुनेगा बिल्कुल, पहले सुनते थे, आज भी नहीं सुन सकते. तो आपके टाइम को कोई पर्याय नहीं है, और टाइम भी अगर कम हो तो क्वालिटी टाइम को कोई पर्याय नहीं है. यू कैन जस्ट बी डिसिप्लिनिंग पीपल इन योर शॉर्ट टाइम दैट यू आर गिविंग. फिर वो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि पापा तो मिलते हफ्ते में एक बार, लेकिन वो 1 घंटा में तो खाली ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये बताते रहते हैं. प्रेम की बात और कुछ है ही नहीं कुछ, तो इससे कोई प्रभावित नहीं होता है. समय का कोई ऑप्शन नहीं आपके लिए, समय देना ही है आपको. व्हाटएवर, इसलिए लाइफ को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इसलिए ज्यादा एम्बिशन रखना नहीं कि मुझे अभी बहुत सारा ये करना है वो करना है, जस्ट सी बेसिक मिनिमम इज प्रोवाइडेड, आपका खाना पीना रहना कपड़ा लगता जो है रहने का बेसिक चीज है, उसके बाद में एजुकेशन है, उसके बाद संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप अपने एम्स में इतने आगे 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 जा रहे हो, बाकी सब कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो आपको उसका फल बाद में मिलेगा। 60 बच्चे अभी होंगे आपके, एक बच्चा भी आपको देखेगा नहीं बुढ़ा होने के बाद, क्योंकि जब वो बच्चे थे तभी आपने उनको समय नहीं दिया, आप उनके लिए ही बिजी थे बहुत, लेकिन टाइम नहीं उनको दिया आपने। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू देम कि आप उनके लिए ही कार्य कर रहे हो, उनके लिए ही उनसे दूर रह रहे हो, उनके लिए ही मेहनत कर रहे हो, उनके लिए ही इतना कष्ट कर रहे हो, दे डोंट केयर फॉर दैट, दैट टाइम दे नीड यू, इफ यू नॉट अवेलेबल दे विल बी अनहैप्पी, एंड देन व्हेन यू नीड देम they will not give time to you, they will have their own business to do, to uspe koi option nahi, isliye keep your life simple, don't make it too ambitious, keep your life simple and do the needful of the basic things first, before do vital things first, then essential and then desirable, isliye make it priority, what is vital in your life, what is essential in your life, what is desirable, like a ring with diamond in the finger, it's desirable, but nahi hoge to aap maroge nahi, nahi pehnoge, hoge to theek hai nahi to chalega, but vital cheez nahi karoge to mushkil ho jayegi aap, to baitho pati patni tay karo vital kya hai hamare liye, essential kya hai, uske anusar chalo, talk baat karte raho, to raise your children, it's a joint project, you and your husband wife, उनकी जिम्मेदारी नहीं, आपका ज्वाइंट जिम्मेदारी है, आपका रोल है उनका रोल है, दोनों का रोल है इसमें, दोनों बैठ के प्लानिंग करो उसका, हाउ गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड और गिविंग बर्थ टू चाइल्ड, डिस्कस प्लान व्हाट आई विल डू हाउ आई विल डू, शुड बी हाईली एम्बिशियस, यू शुड फोकस ऑन बेसिक थिंग्स फर्स्ट। अगर आपका बच्चा प्रधानमंत्री बन जाएगा देश का, लेकिन उसके बाद नरक में चला जाएगा, तो क्या हासिल किया आपने उसको, और प्राइम गोल इज टू हेल्प हिम टू गो बैक टू गॉड इट, ओके, सो वी एंड हियर, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा, वेरी हैप्पी, ओके।